जय राधा माधव कुंज विहारे, विष्णुपाद परमहंस प्रगाचार्य अष्टोदर सतीमांग शेषी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल गॉड, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल गॉड, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वृष कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम गोवर्धन कृषि क्षेत्र में ब्रह्मोत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने विश्व में कई जगह पर मंदिरों की स्थापना की। उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की। क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर भक्ति भाव से आता है, भगवान के विग्रह का दर्शन करता है, तो उसे फिर से माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो यह शास्त्र का विधान है। तो इसलिए भले इस कलयुग में नाम संकीर्तन प्रमुख है, फिर भी नाम संकीर्तन करते हुए हमें भगवान के विग्रह का पूजन करना होता है। चैतन्य चरितामृत में हमने देखा है कि वो जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो भगवान से संबोधित करता है, उस साक्षी गोपाल के कहानी में आता है। तो भगवान कहते हैं उसको कि मैं चल के आपके गांव में आकर साक्ष्य नहीं दे सकता। तो उस समय वो भक्त व्यक्ति है वो कहता है कि प्रतिना नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, आप केवल एक विग्रह नहीं है मगर आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन है, आप व्रजनंद्र के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अगर आप बोल सकते तो आप चल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं दिखा देते हैं कि कैसे उनके अर्च विग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अर्च विग्रह और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम भगवान को हमारे सीमित इंद्रियों से देख नहीं सकते, तो इसलिए अहित की कृपा के कारण भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में बद्ध जीवों के सामने प्रकट होते हैं कि जिससे बद्ध जीव उनकी पूजा अर्चा कर सके। तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। और जैसे ही हम अर्च विग्रह की पूजा करते, जैसे नवविधा भक्ति है, वो नवविधा भक्ति के सारे अंग जो है हम विग्रह की पूजा में कर सकते हैं। अगर भगवान के विग्रह की पूजा करना है तो उसके लिए शास्त्र में कुछ नियमों का वर्णन किया है। अगर हम इस नियमों का पालन करते हैं तो हम कृष्ण को उनके विग्रह के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अर्चना पद्धति है, उसका फल हमें क्या प्राप्त होता है कि सबसे महत्वपूर्ण फल होता है कि भगवान को व्यक्तिगत रूप में हम जान सकते हैं। आमतौर के लोगों के मन के अंदर ये भावना रहती है कि भगवान जो है निराकार है या भगवान को कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार का तत्वज्ञान कई लोग बोलते हैं, मगर ये इस तत्वज्ञान का जो रोग है वो भगवान के अर्च विग्रह का पूजन करने से दूर हो सकता है। तो जैसे हम लोग पंचरात्र की विधि से भगवान के विग्रह का पूजा करते हैं तो हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति एक प्रेम जागृत होता है और वो तत्व है हम उसको जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंत में शुद्ध बनकर भगवान के धाम में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर वो क्या कर सकता है? तो भगवान की व्यक्तिगत सेवा कर सकता है। तो उसका ही प्रशिक्षण हमें इस भौतिक जगत में ये विग्रह की सेवा से प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान जो है इस धरती पर प्रकट होते हैं और अलग अलग अवतारों से लीला करते हैं जिससे बद्ध जीवों का मन भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो। तो इसलिए कुछ दिन पहले हमने प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन जो है अवतरण दिन है वो मनाया था। तो उसमें देख सकते कि भगवान के जो रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, वही चैतन्य चरितामृत है, ये जो लीला है उसे बद्ध जीव है वो हमारा जो भगवान के साथ का रिश्ता है उससे पुनर्स्थापित कर सकता है। तो इसी प्रकार से रामायण में एक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान है अपने बाणों से वाली का वध करते हैं, तो भगवान का दिव्य बाण लगने पर वारी जो है वो धरती पर गिर जाता है। उसका वर्णन ऐसा है कि वाली जो है बहुत शक्तिशाली था, अनेक योद्धाओं को उसने युद्ध में हराया था, पर भगवान के एक बाण से वो बहुत घायल हो जाता है। तो वर्णन किया जाता है कि जैसे स्वर्ग में व्यक्ति रहता है मगर जब उसके पुण्य का संचय समाप्त होता है तो तुरंत उसका पृथ्वी पर पतन हो जाता है। जैसे कि ययाति राजा था इतिहास में, वो स्वर्ग में गया था, मगर उनका पुण्य का संचय समाप्त होने के बाद वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो उस प्रकार से वाली जो है धरती पर गिर जाते हैं। तो वर्णन किया जाता है कि जैसी आकाश है उसमें चंद्रमा की बहुत शोभा होती है, मगर अगर आकाश में चंद्रमा न हो तो वो आकाश जो है सुना सुना लग जाता है। तो इस प्रकार से रणभूमि पर वो गिर जाने से बहुत जगह जो है शोक फैल जाता है। और वाले के गले में जो है इंद्र ने उसको एक मणियों की, दिव्य मणियों की माला अर्पित की थी, वो हमेशा उसके अंग को सुशोभित करती रहती थी। आज वो माला भी 3 जगह पर बिखरी हुई शरीर पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से एक महान योद्धा धरती के ऊपर गिरने के बाद सब लोग जो है आर्तनाद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि राम और लक्ष्मण ने कई दूरी पर खड़े रहते हैं और वहां से वो बाण चलाते हैं, मगर जब वाली गिर जाता है तो एक महान योद्धा का आदर करने के नाते प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के साथ उसके समीप आ जाते हैं। तो देखते हैं कि जैसे अग्नि है और बहुत तेज से प्रकाशित होते रहता है, मगर अंत में वो बुझ जाता है, उसके ऊपर राख जो है आ जाती है। तो उस प्रकार से वाली जो है जो इतना तेजस्वी था, तो अभी वो बुझी हुई आग के समान प्रतीत हो रहा था। और ये बाण लगने के कारण उसका जीवन का अंतिम क्षण और अभी बहुत नजदीक आ रहा था। मगर जैसे ही प्रभु रामचंद्र को देखता है तो विनय पूर्वक मगर तीखे वचन बोलना चालू कर देता है। वाली को प्रथम यह समझ में नहीं आता है कि क्यों जो प्रभु रामचंद्र सर्वगुण संपन्न है उन्होंने मेरे ऊपर ये तीर चलाया है। तो वो कहने लगता है कि आप तो दशरथ महाराज के पुत्र है, इक्ष्वाकु वंश के है, और मैं तो अन्य किसी व्यक्ति के साथ युद्ध में जुड़ा था, मैं आपके तरफ देख भी नहीं रहा था और फिर भी आपने मेरे ऊपर बाण चलाया है। वैसे तो आज सारी पृथ्वी जो है आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। आप सर्व जो भी सद्गुण दुनिया में पाए जाते हैं वो सारे सद्गुण जो आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर जो है क्षमाशीलता है, आप सभी जीवों के हितचिंतक है, आप दृढ़व्रती है, सदाचारी भी है, सब जीवों के हितेशी है और एक कुलीन व्यक्ति आप है। और वो कहने लगते हैं कि राजा जो होता है राजा के अंदर कई गुण पाए जाते हैं, तो इसके सबसे पहले राजा का गुण होता है कि वो अपने इंद्रियों को हमेशा संयमित रखता है। उनके इंद्रिय संयम रहते हैं, उनका मन संयमित रहता है, उन धर्म के अनुसार वो आचरण करते हैं, वो हमेशा क्षमाशील रहते हैं, धैर्य सत्य शौर्य और अपराधियों को दंड देना ये राजा के कार्य होते हैं। और ऐसे इक्ष्वाकु कुल में आप अवतरित होने के बावजूद भी अभी आपने जो कार्य किया है वो तो बहुत निंदनीय है। हालांकि इस युद्ध भूमि में आने के पहले मुझे मेरी पत्नी जो तारा है उन्होंने चेतावनी दी थी कि सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र के साथ मित्रता का संबंध प्रस्तावित किया है, तो उससे आपको धोखा उत्पन्न हो सकता है। बल में सुग्रीव आपसे बहुत कमजोर है, फिर भी अगर इस समय वो युद्ध के लिए आपको ललकार रहा है इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई शक्तिशाली मित्र है और उनके भरोसे पे वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो इसलिए आप युद्ध में मत जाइए। मगर आज जो है मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र जो है वो कभी भी अधर्म का कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि आपने केवल अच्छे गुणों का बुरका पहन के रखा है, मगर अंदर जो है आप कपट जो है कर रहे, कि जैसे एक कुआ होता है, कुआ के ऊपर घास रहता है, तो आदमी को लगता है कि जमीन है, घास है, और वो कुएं के अंदर फंस जाता है। उसी प्रकार से मैं जो है फंस गया हूं। आपने तो उस वेश आपका जो है वो पूरी तरह से साधु का दिखाई दे रहा है, आपने जटा बना के रखा है, वलकल लगाया है, और साधु की तरह आप देखते हुए चल रहे हैं, मगर फिर भी ऐसे दिख रहा है कि आप एक पापी व्यक्ति की तरह है। जिस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि अग्नि होता है मगर उसके ऊपर राख इकट्ठा होती है, तो आदमी उसे फंस सकता है, क्योंकि अंदर बहुत प्रखर अग्नि होती है, ऊपर से देखते हुए राख दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप केवल साधु के वेश में घूम रहे, मगर अंदर जो है आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो। और उसके बाद में मेरा इसमें क्या गलती था कि मैंने आपके राज में किसी प्रकार का उत्पाद नहीं किया था या किसी प्रकार का विध्वंस नहीं किया है, मैं तो किसी प्रकार का पाप किया नहीं है, और फिर भी आपने मेरा जो है वध किया है। और मैं कौन हूं, तो मैं तो वानर हूं, और वानर क्या करता है कि जंगल के फल मूल कंद जो है वो खा के जीता है। मैंने आपके प्रति कोई अपराध तो किया नहीं है। और वानर और मानव, इनके बीच में कलह का कुछ कारण नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कलह किस चीज के लिए होता है? कि अगर कोई जमीन है, कोई सोना है, कोई चांदी है, तो उसके लिए झगड़ा होता है। वानर व्यक्ति जो है वो तो फल जंगल में रहता है, कंदमूल खाता है, और न तो हमारा जो मांस है वो मानव के लिए भक्षण के योग्य है, न तो हमारा जो चमड़ा है वो भी किसी संत या साधु को किसी उपयोग में आ नहीं सकता है। तो इसलिए मुझे जो है आपने जो है मेरे सामने आकर नहीं, मगर छुप कर जो है मेरे ऊपर आघात किया है। कि जैसा कोई व्यक्ति है, वो नींद में है और अचानक उसको जहरीला सांप आकर डस लेता है और उसे उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, निरोगी है, मगर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से आपने जो है अकाल मेरी मृत्यु कर दी है। तो वास्तव में जो रघुकुल तिलक, रघुकुल जो है जिसको आपको रघुकुल तिलक करके संबोधित किया जाता है, और जो धर्मात्मा करके प्रसिद्ध है, मगर फिर भी आपने ये अशुभ कार्य किया है, निंदनीय कर्म किया है, तो ऐसे कर्म के बाद आप किस प्रकार से साधु संतों को आपका मुंह दिखा सकते हैं? कि तो इस प्रकार से अलग अलग कारण सुग्रीव सोचने लगता है कि क्या कारण हो सकता है। और उसके बाद में वो ये भी कहता है कि जैसे अगर मान लो कि सुग्रीव के साथ आपका मैत्री का संधि हो गया है, और सुग्रीव ने आपको ये वचन दिया है कि मैं आपके पत्नी को ढूंढ कर उसको आपके पास वापस ले आऊंगा, तो अगर ये जो कार्य है, अगर ये कार्य तो क्या मैं एक दिन के अंदर कर सकता था? रावण जो है उसको गले के अंदर रस्सी बांधकर उसको खींच के आपके सामने में खड़ा कर देता था, और वो कहने लगता है, उसके बाद में थोड़ा उसको अच्छा चीज याद आता है, वो कहने लगता है कि हालांकि मैं तो ये जानता हूं कि एक ना एक दिन हर व्यक्ति को मृत्यु के जाल में जाना ही है, तो इसलिए मेरे मन के अंदर ये दुख नहीं है कि मृत्यु होना है। मैं जानता हूं कि मृत्यु तो हर व्यक्ति की होनी है, मगर जिस प्रकार से मुझे मारा गया है वो अन्यायकारक है और इसलिए मुझे दुख लग रहा है। तो ये कहते समय जैसे कि सूर्य है उसकी अगर प्रभा निकल गई, या जो बादल है उसमें जल नहीं है और आग है वो बुझ रही है, तो उस प्रकार से वाली जो है धीरे धीरे श्रीहीन होते जा रहा था। तो इतना सारा कहने के बाद प्रभु रामचंद्र जो है वो कहने लगते कि आपको मैंने जो दंड दिया है उसके कुछ कारण हैं। तो सबसे पहले प्रभु रामचंद्र कहने लगते हैं कि मैं भरत का प्रतिनिधि हूँ और भरत के ओर से मैं राज्य चला रहा हूँ। ये सारा पृथ्वी है उसके मालिक अभी इक्ष्वाकु के वंश के लोग हैं और ये सारे विश्व के संचालक, सारे विश्व के मालिक होने के, राजा होने के नाते उनका यह कर्तव्य होता है कि उनके राज्य के अंदर कोई भी कुछ गलत कार्य करता है तो उसे दंड देना है। तो भले वो जानवर हो या पक्षी है या आदमी है, सभी को दंड देना जो है वो हमारे राजा का कर्तव्य है। तब इस वक्त पे भरत जी है राज्य कर रहे हैं और वो हमेशा देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके राज्य के अंदर गलत कार्य कर रहा है तो उसको वो दंड देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह कर्तव्य है कि सारे विश्व में धर्म की अच्छे तरह से स्थापना करना चाहिए। तो ये पहला कारण देते हैं कि मैं राजा होने के नाते गलत अपराधियों को या गलत व्यक्तियों को, अपराधियों को दंड देना ये हमारा कर्तव्य ही है। उसके साथ साथ में आपको दंड इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने आपके जीवन में केवल काम को ही प्रधानता दिया है, तो इसलिए आपके कार्य जो है वो धर्म का नाश करने वाले हैं। तो इसलिए साधु संत जो है ऐसे कार्य की हमेशा निंदा करती हैं। तो कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा बड़ा भाई है या जो व्यक्ति हमें विद्या प्रदान करता है या अपने माता पिता, उनको पिता के समान सम्मान देना चाहिए। और साथ साथ जो हमारा छोटा भाई है या गुणवान शिष्य है, इन सभी लोगों को अपने पुत्र के समान सम्मान करना चाहिए। और इसमें हमारे जीवन में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है इसका निर्णय करने का अधिकार परमात्मा या भगवान का होता है। और आपने जो है बहुत कुछ धर्म की बातें कही, मगर आपकी बातें ऐसी है कि आपने सही धर्म को समझानी है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंध है, ऐसा व्यक्ति अन्य किसी जन्म से अंधे हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने का प्रयास करेगा तो कभी भी वो सही रास्ते पे नहीं आ सकता। तो उस प्रकार से आप स्वयं धर्म के बारे में अज्ञानी हो, हालांकि आपने तो धर्म का त्याग कर दिया है। आपके छोटे भाई का जो पत्नी है उसका आप उपभोग ले रहे हो कि जिसको पुत्र वधु के समान सन्मान करना चाहिए, तो ये आपके हाथ से घड़ा हुआ एक पाप कार्य है। तो आपका आचरण जो है धर्म के अनुसार नहीं है, आपने सही धर्म छोड़कर अधर्म के रास्ते पे आप चल रहे हो। और साथ साथ मेरा सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध है और उस नाते जिस प्रकार से मैं भरत के प्रति प्रेम करता हूँ, वो लक्ष्मण के प्रति प्रेम करता हूँ, उसी प्रकार से सुग्रीव भी मेरा छोटा भाई है और मैंने उसको वचन दिया है कि मैं आपका राज्य और आपका पत्नी है उसको वापस दिलाऊंगा और ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि मैंने आपको जो दंड दिया है वो धर्म के अनुसार ही है। और अगर आप धर्म के अनुसार राज्य करते थे तो आप भी आपके राज्य में इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अधर्मी कार्य करता था तो आप उसको भी दंडित करते थे। उसके बाद में शास्त्र में ये नियम गए हैं, बताए गए हैं कि जो राजा है उसको, जो पापी व्यक्ति है उसको दंड देना है तो ही वो ऊंचे लोक में जा सकता है। अगर राजा है धर्म के अनुसार अपराधियों को दंड नहीं देता है तो उसको लोगों का पाप जो है भुगतना पड़ेगा और उसकी गति अधोगति हो जाएगी। तो इसलिए राजा जो है अगर अच्छे कार्य होता है तो उसका सौभाग्य होता है, मगर अगर कोई पाप कार्य है तो उसको भी राजा को भुगतना पड़ता है। तो इसी कारण हमारे वंश के जो भी राजा है उन्होंने धर्म के अनुसार ही राज्य किया है। और उसका एक प्रमाण देते हैं कि सबसे पहले जो है कि शास्त्र का एक ये होना चाहिए, नियम होना चाहिए, शास्त्र में क्या दिया है वो देखना चाहिए, और साथ साथ शास्त्र के अनुसार हमारे पहले जो राजा लोग हैं, जो संत लोग हैं, उन्होंने कैसे कार्य किया है उसको देखना होता है। तो इसलिए वो करते हैं कि मेरे वंश में पूर्वज में मंधांत करके एक राजा थे और उन्होंने श्रमण नाम के व्यक्ति को इसी प्रकार से ही दंडित किया था। तो इसलिए मैंने आपका जो वध किया है वो पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार है, इसलिए आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। और हम जो है शास्त्र के कारण ही इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और साथ साथ दूसरा एक है कि हम तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के कारण हम जो पशु योनि के लोग हैं उसका वध कर सकते हैं। तो इसलिए कोई शास्त्र में दोष नहीं बताया है कि क्षत्रिय अगर कोई मृग है वो किसी जाल में फंसा हुआ है तो उसके ऊपर तीर चला सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे तरफ देख रहे हो या नहीं देख रहे हैं, अगर मृग शाखा होने के कारण मैं आपका वध कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमेशा जीव के मन के अंदर यह संभ्रम रहता है कि असली धर्म क्या है, सही कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, और ये अज्ञान नष्ट केवल भगवान ही कर सकते हैं, या भगवान के द्वारा लिखित जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उसका अध्ययन करने से ही ये अज्ञान दूर हो सकता है। तो यहाँ पर वाले के मन के अंदर यह अज्ञान था, उसको लग रहा था कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें कोई गलती नहीं है, मगर प्रभु रामचंद्र ने उसको बताया कि किस प्रकार से उसका कार्य जो है वो पूरी तरह से अधर्मी है, और इस कारण राजा को उसको दंड देना राजा का कर्तव्य होता है। और अभी ऐसे होता है कि जब भी प्रभु रामचंद्र के साथ सहवास होने से और साथ साथ उनके दिव्य वाणी सुनने के बाद वाले के मन के अंदर का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। तो उस समय वाली जो है ये मन के अंदर से सोचना बंद कर देता है कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, यार प्रभु रामचंद्र ने गलत तरीके से मेरी हत्या की है। फिर वाली कहने लगता है कि हम तो पशु योनि के व्यक्ति है, हम धर्म का ज्ञान समझ नहीं सकते, क्या धर्म है हम समझ नहीं सकते हैं, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत है, तो आपने जो बात कही है वो उचित बात है, हम आपके साथ किस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो मेरे जैसे निम्न यो पशु योनि का व्यक्ति आपके साथ जो है विवाद नहीं कर सकता है। तो मैंने अभी तक जो क्रोध पूर्वक कुछ वचन आपको सुनाए, कृपा करके आप मुझे क्षमा करना। मेरे के मन के अंदर यही भावना है कि मेरे पुत्र के प्रति मेरा बहुत स्नेह है और उसके लिए मेरे को दुख होता है, न कि मैं अभी मर रहा हूँ या मेरी पत्नी जो है उसके ऊपर मेरा इतना प्रेम नहीं है जितना मेरे पुत्र के ऊपर है। मेरा एकलौता बेटा होने के कारण मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया है और अब मैं नहीं हूं, उसे उसको बहुत दुख होने लगेगा। तो इसलिए मेरी विनंती है आप सभी को कि आप कृपा करके उसका रक्षण कीजिए और जिस प्रभु रामचंद्र को वाली कथा कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लक्ष्मण भरत के प्रति व्यवहार कर रहे, सुग्रीव के प्रति व्यवहार कर रहे, उसी प्रकार से प्रेम भाव से मेरा पुत्र जो अंगद है उसके साथ भी कृपा करके आप व्यवहार कीजिए। जिस प्रकार से अभी सुग्रीव आपके कृपा का पात्र हो गया है, उसी प्रकार से मेरा पुत्र जो है आपकी कृपा का प्राप्त हो गया है। क्योंकि दुनिया में ये विशेष है कि जिसको भी भगवान की कृपा प्राप्त होता है वो यशस्वी होता है और जिसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है जीवन में कभी वो यशस्वी नहीं हो सकता। और वास्तव में मैं तो ये जानता था कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत है, मेरी पत्नी तारा जो है उसने मेरे को कहा था और वो मुझे रोक रही थी, फिर भी मेरे मन के अंदर यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए पत्नी ने मना करने के बावजूद भी मैं युद्ध भूमि में आ गया था। तो ये कहने के बाद फिर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैं जो है आपके पुत्र का जरूर रक्षा करूंगा, उसके मैं आपको वचन देता हूं। तो आपने जो भी अपराध किया है आपको उसको दंड मिला है, तो आपके सारे पाप अभी नष्ट हो गए हैं, तो इसलिए आपका सारा शोक मोह भय आपके हृदय से निकाल दीजिएगा। क्योंकि जो भी विधाता ने लिखा है, जो भी हमारी डेस्टिनी है, उसको कोई भी हटा नहीं सकता है, टाल नहीं सकता है। जिस प्रकार से आपने पितृ प्रेम से अंगद का रक्षा किया है, उसी पितृ भाव से हम लोग जो है अंगद की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। फिर वाले का वध होने का जो समाचार है सारे राज्य में फैल जाता है, उसकी पत्नी तारा है उसको भी ये समाचार मिल जाता है और वाले के जो भी अनुचर है उनको भी ये समाचार प्राप्त होता है। तो तुरंत जो है वो पर्वत के कंदरों के अंदर बैठे रहते हैं, जहाँ पर वाले की वध हुआ होता है उस स्थान पर आने लगते हैं। तो कई जो वानर है जो वाले के पक्ष में है उनको अभी बड़ा भय लगता है, क्योंकि अभी वाले का वध हो गया है, तो सुग्रीव के पक्षीय जो वानर है उनका भी राज्य होगा और वो जो है राज के लोभ से हमारे ऊपर अन्याय कर सकते हैं। तो इसलिए वाले के पक्षीय जो वानर है वो तारा को आगे जाने के लिए मना करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग कहीं और राज्य में भाग जाए। तो तारा कहते हैं कि मेरा जो धन है अभी वो नष्ट हो गया है, तो मेरे को अभी किसी राज्य के प्रति, मेरे पुत्र के प्रति या मेरे स्वयं के शरीर के प्रति कोई प्रयोजन नहीं रहा हूं। वास्तविक मुझे तो लग रहा है कि मेरा हृदय जो है वो पत्थर से बना हुआ हो सकता है, क्योंकि ये इतना बुरा समाचार प्राप्त होने के बाद भी उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए हैं। वास्तविक मेरे पति जो है वाली ने, उसने जो दुष्कर्म किया है, उसके छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया था, उनको राज्य से निकाल दिया था, उसके दुष्कर्मों का अभी उसको फल प्राप्त हुआ है। फिर वहां पर वो आती है और वाली के प्रति जो है शोक करने लगती है, तो उस समय फिर हनुमान जी है वो कहना चालू कर देते हैं। बड़े सुमधुर वाणी से जो है हनुमान जी बोलना चालू करते हैं। हनुमान जी के वाणी का एक विशेष होता है कि उनको इतने बृहस्पति सूर्य देवता इनसे इतना अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया होता है कि उनके वाणी में कभी भी किसी भी प्रकार का आप दोष नहीं देख सकते, और कानों को बहुत सुमधुर लगते थे। तो वो हनुमान जी भी बोलना चालू करते हैं कि अभी जो हुआ है विधाता की इच्छा के अनुसार वो तो हो चुका है, हमें अभी हमारा पुत्र के नाते जो भी कर्तव्य है वो अभी कर्तव्य करना पड़ेगा। तो वाले के जो अंतिम संस्कार है और साथ साथ अंगद का युवराज के पद के ऊपर राज्याभिषेक करने के लिए अभी शुरुआत कर देना चाहिए। और जब ये अंगद युवराज के पद पर विराजमान होगा वो देखते हुए आपका मन जो है शांत हो सकता है। तो उस समय वाली जो है वो सुग्रीव अंगद को एक अंतिम संदेश दे देता है। तो वाली अभी सुग्रीव को बताना चालू कर देता है कि मेरे मन के अंदर जो पाप वृत्ति थी, मेरे मन के अंदर जो लोभ प्रवृत्ति थी, उससे कारण ही आप मेरे छोटे भाई होने के बावजूद मैं आपको मेरा शत्रु समझता था। तो इसके लिए मेरे अपराध के कारण आप जो है मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे लगता है कि ये नहीं था कि हम दोनों साथ में मित्रता पूर्वक रहकर राज्य कर सके। तो जहां प्रेम होना चाहिए वहां वैर भाव उत्पन्न हुआ, और उस कारण जो है ये मेरे दुष्कर्म के कारण अभी मेरा पुत्र जो है अभी दुख कर रहा है, और आप कृपा करके जो है मेरे पुत्र का जो है संभाल कीजिए। ये मेरा पुत्र जो है वो आपको युद्ध में मदद करेगा। और साथ साथ जो है वो अपने अंगद को पुत्र को बताते हैं अभी इसके आगे जो भी प्रभु रामचंद्र आपको कहेंगे उसके अनुसार ही आप कार्य कीजिए। सुग्रीव जो है अभी इसके आगे आपके जो चाचा है वो पिता के रूप में आपको सारा देखभाल है वो कर देंगे। और साथ साथ वो कहते हैं कि मेरी ये जो इंद्र ने प्रदान की हुई दिव्य माला है इस माला को आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस माला के अंदर की जो शक्ति है वो भी चली जाएगी, मगर मृत्यु के पहले अगर आप इस माला को पहनते हैं तो आपको भी ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जब ये वाले के वचन सुनता है, क्योंकि आज तक वाले के ऊपर सुग्रीव के ऊपर वाले ने इतना अन्याय किया रहता है कि सुग्रीव के मन के अंदर बहुत क्रोध और वैर भाव निर्माण होता है, और अभी उसकी जो इच्छा है कि वाले का वध हो, वाले का वध तो हो गया है, मगर वाले जो अंत में ये जो वचन कहता है उससे जो विजय का आनंद है वो सुग्रीव के मन से पूरी तरह से निकल जाता है। कि जिस प्रकार से चंद्रमा है उसको ग्रहण लग जाता है उस प्रकार से सुग्रीव के आनंद को ग्रहण लग जाता है। और फिर ये वहां पर स्थिति ऐसी रखती है कि जैसे जंगल के अंदर सिंह रहता है, वो सिंह बड़े सांड का वध करता है, तो फिर गाय अपने बछड़े के साथ उस जगह पे आकर आती है और दुखपूर्वक विलाप करती है। उसी प्रकार से तारा जो है वो अपने पति के पास आकर विलाप करती है। और फिर बाद में प्रभु रामचंद्र जो है वो सुग्रीव को और तारा को संबोधित करते हैं। तो सुग्रीव को लगता है कि पहले कि मेरे के मन के अंदर मेरे भाई के प्रति बहुत वैर की भावना रही, बहुत ईर्ष्या रही, और उस कारण मत्सर के कारण क्रोध में फंस गया, और उस कारण मेरे को लगता था कि मेरे भाई की जो है वध होनी चाहिए। मगर वास्तव में अभी तो मैं समझ रहा हूं कि वालिक को मेरा वध करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि युद्ध में ऐसे होता है कि वाली उन एक शाखा लेकर सुग्रीव के ऊपर जोर से प्रहार करता है, तो एक घड़ी तक जो है सुग्रीव वहीं पे पड़ा रहता है। तो उस समय वाली उनको कहता है कि देख, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, युद्ध में तू मेरे से जीत नहीं सकता है, तो इसलिए चुपचाप आप वापस चले जाओ, क्योंकि अगर मैं मेरे भाई की हत्या करता हूं तो उससे मेरा यश है वो कलंकित हो जाएगा, तो इसलिए आप वापस जाओ। तो सुग्रीव को लगता है कि ये जो भातृभाव है, बंधु भाव है, वो वाल ने रखा था, तो धर्म के अनुसार वारी चल रहा था। मगर मैं जो है एक वानर होने के कारण मेरे मन के अंदर काम क्रोध ये आ गए, और मैंने ही वास्तविक वाली के प्रति अपराध किया है, तो मेरे कारण प्रभु रामचंद्र ने वाले का वध किया है, तो मैंने पाप किया है। तो उसको जो याद आता है कि इंद्र के हाथ से भी एक समय पाप हुआ था, मगर क्या हुआ कि उसका पाप जो है पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्ष ने उसको स्वीकार किया, मगर मेरा जो पाप है वो कौन स्वीकार करेगा? तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे सैन्य के अंदर बहुत शक्तिशाली वानर है, आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए वो मदद करेंगे, तो इसलिए मैं भी अभी इस समय पे प्राण को त्याग दूंगा। फिर तारा जो है वो प्रभु रामचंद्र को संबोधित करते हैं कि वास्तविक आपको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और आप जो है पृथ्वी के समान क्षमाशील है, जितेंद्रिय है, आप धर्मात्मा है, आप का शरीर जो है दिव्य शरीर है, तो जिस बाण से आपने मेरे पति की हत्या की है उसी बाण से मेरी भी हत्या कीजिए, क्योंकि अभी वाली जो है उसका वध होने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मगर स्वर्ग में वो अगर मैं नहीं हूं तो वाली वहां पर भी सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप जो है मेरे प्रति ये कृपा करना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र कहने लगते कि आप तो वीरपत्नी है, तो इस प्रकार से देह का त्याग करने का विचार आप छोड़ दीजिए। इसमें ये जो भौतिक जगत है हमेशा सुख और दुख ये दोनों चीजों से भरा हुआ है, और विधाता का जो इच्छा है उसके अनुसार ये सारा जग जो है चलते रहेगा। तभी विधाता की इच्छा है कि आपका पुत्र जो है युवराज के रूप में राज्य करे, और उससे जो है आपका फिर से सारा धन जो है आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस समय आपका ये कर्तव्य है कि माता के रूप का जो कर्तव्य है वो आपको करना उचित है। काल जो है ये सारे जगत को नियंत्रित करता है, और काल के लिए जो है कोई मित्र नहीं है या कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, और कोई भी काल को पराजित नहीं कर सकता। काल जो है वो भगवान के नियंत्रण में हमेशा रहता है। तो जो इस दुनिया में अपने कर्तव्य को पालन करता है वही यशस्वी हो सकता है। और वाले के प्रति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हाथ से उसकी मृत्यु होने के कारण वो भी पवित्र और शुद्ध बन गया है, मुक्त हो गया है, और उसको उच्च गति प्राप्त हुई है। तो इसलिए अभी शोक को त्याग कर कर आप आपका कर्तव्य कीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शास्त्र हमें इस भौतिक दुनिया का वास्तविक रूप क्या है वो बताते हैं। इस भौतिक जीवन में हमें सुख आएगा, दुख आएगा, और एक दिन में हमारा अंत जो है होने वाला ही है। कि जैसे भगवद गीता में कहा है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, इसका मतलब क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। एंड ध्रुवम जन्म मृतस्य च, के जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म होगा ही। तो इसलिए तस्मात् अपरिहार्यते, के ये चक्र जो है, ये प्रवाह जो है हमेशा चलते रहता है, इसलिए हमें अपना कर्तव्य हमेशा करना चाहिए। न त्वम शोचितुम अर्हसि, मतलब कभी भी आपको शोक नहीं करना है। तो ये अनादिकाल से जन्म मृत्यु का प्रवाह है, वो चलते आ रहा है और भविष्य में चलते ही रहेगा। जैसे अर्जुन के मन के अंदर ये भय था कि अगर मैं मेरे सारे रिश्तेदार और गुरुजनन का वध कर दूंगा तो ऐसे राज्य प्राप्त करके मुझे आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो उस समय भगवान ने यह कहा था कि अगर आप वध नहीं करेंगे उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। जिस समय उनकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु तो होगी ही, और कोई भी धृतराष्ट्र को पुत्रों को मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो इसलिए अगर आप आपका कर्तव्य नहीं करेंगे तो उसकी आपकी अधोगति होगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का मृत्यु आप रोक नहीं सकते। मगर क्षत्रिय होने के नाते अगर आपका कर्तव्य आप नहीं करते तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो इसलिए हमको ये समझना है कि जैसे सूरज है, तो सुबह के समय सूरज का उदय होता है और शाम के समय अस्त होता है। मगर ऐसा नहीं होता है कि सूरज का शाम के समय अस्त हो गया तो हम लोग दुखी करते हैं कि अरे सूरज का जो है अस्त हो गया, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे पास ये विवेक है, बुद्धि है, कि अगर सूरज का आज शाम के समय अस्त हो गया है वो कल जो है सुबह के समय उसका उदय होगा ही। तो सुबह के समय हमको बहुत आनंद होता है कि सुबह के समय सूर्य का उदय होते समय हम दर्शन करते हैं, मगर सूर्य का उदय हो गया तो सूर्य का शाम के समय अस्त होगा ही। तो सूर्य के अस्त और उदय से जैसे हमको दुख नहीं होता है, ठीक उसी तरह से इस संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र चलता है हमें कभी उसका दुख नहीं होना चाहिए। न तो हर्ष होना चाहिए न तो दुख होना चाहिए। मगर कम हम कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे परिवार के, हमारा प्रिय व्यक्ति या कोई रिश्तेदार है उसका निधन होता है, या कभी कभी हमारा प्रिय जो धन है वो नष्ट हो जाता है, उससे हमारा हमको भारी दुख महसूस होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भविष्य की चिंता हमारे हृदय के अंदर रहती है कि अगर ये मेरे पत्नी का निधन हो गया है तो फिर मैं कैसे जी सकता हूँ। तो इस प्रकार का शोक मन के अंदर प्रवेश करता है। ये शोक क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि बुद्धि जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, विवेक जागृत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो जानता है कि ये परिवर्तन है, ये भौतिक जगत का नियम ही है। जिस प्रकार से सूर्य का उदय होगा तो अस्त होगा, अस्त होगा तो उदय होना ही है। तो ये भौतिक जगत में परिवर्तन, स्थिति बदलनी है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो उसका मतलब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। या अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो थोड़ा अध्ययन करने के बाद बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो मूर्ख व्यक्ति का परिवर्तन बुद्धिमान व्यक्ति में होना ही है। या अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति जो है दवाई लेने के बाद निरोगी होगा ही। तो इसी प्रकार से अगर परिवर्तन नहीं होगा तो जिस प्रकार से चित्र है, अभी ये चित्र है, एक बार ये चित्र बना के समाप्त हो गया, फिर जैसे है वैसे ही दिखाई देगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता। तो इसी प्रकार से अगर हम ये चीज को ठीक तरह से नहीं समझ सकते कि जो भी चीज भौतिक है वो हमेशा उसमें परिवर्तन आना ही है, इसलिए भौतिक चीज नष्ट होती रहेगी। भौतिक चीज के अंदर जो आत्मा है वही निरंतर है और वही जो है हमेशा रहेगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका मृत शरीर हमारे हमको आंखों के सामने दिखाई देता है, मगर हम कहते हैं कि उस व्यक्ति चला गया है, उसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति का आत्मा है, उसने शरीर को छोड़ दिया है। तो ये जो चीज है ये समझना हर एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो विषय है जिसमें शरीर और आत्मा के जो फर्क है समझने का, ये केवल कुछ अध्ययन का विषय नहीं है कि गीता के दूसरे अध्याय में ये विषय बताया है और फिर हम लोग हमारे भक्ति शास्त्रों कई विषय इसमें उसके बारे में लिख दे। ये जो विषय है हमारे अनुभव का विषय है, हर जीव को ये अनुभव होना चाहिए कि हम और शरीर के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि अगर ये फर्क नहीं जानते हैं तो हमेशा हमारा शरीर के प्रति मोह बनाए रहेगा। तो इसलिए शरीर और ये भौतिक चीज के प्रति जो मोह है वो हमको छोड़ना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि हमें हमको हमेशा बताया जाता है, विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है तो दीक्षा के समय कुछ वचन लेता है, व्रत लेता है, तो उस व्रत में क्या होता है कि हरिनाम का जप होता है और कई नियमों का पालन करना होता है। तो इसलिए हर एक साधक को जीवन में साधना करना है, तो अगर ये साधना यशस्वी होना है तो आसक्ति का त्याग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम आसक्ति का त्याग न करते हुए बड़े कितनी भी बड़ी तपस्या करो उससे हमें फायदा नहीं होता है, हम तत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। कि जैसे हिरण्यकश्यपु के रूप में है, हिरण्यकश्यपु ने तो ऐसी कड़ी तपस्या की कि जो हम सोच नहीं सकते, और उसको थोड़ा ये भी ज्ञान था, तत्वज्ञान जानता था वो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मगर उसका अनुभव उसने नहीं किया, उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं रहा। कि जैसे कितनी कड़ी तपस्या करने के बाद उसको जो भी वरदान प्राप्त हुआ उसके बाद उसने इस प्रकार से भोगों को भोगना चालू किया कि उसका सारा मन जो है आसक्ति में अटक गया। तो अगर कोई व्यक्ति केवल कड़ी तपस्या कर सकता है उससे जीवन में यशस्वी नहीं होगा। यशस्वी कब होगा कि जब भी वो हृदय के अंदर की आसक्ति है उसको त्याग कर सके। तो हमको ये जानना है कि ये जो शरीर है जिसके प्रति हम इतने बहुत आसक्त रहते हैं, मगर ये शरीर एक दिन हमको छोड़ देगा, क्योंकि ये शरीर जो है जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि इस दिन पे वो तैयार हुआ है, और उसका एक एक्सपायरी डेट भी है कि इस दिन पे वो अंत होगा। तो अगर जीव सोचता है कि मेरा शरीर और शरीर के प्रियजन इतने मेरे प्रिय है, मगर जो आपको छोड़ने वाला है तो उसको आप क्यों नहीं छोड़ सकते? तो जो आपको छोड़ने वाला है उसके प्रति आप ममता हृदय के अंदर रखने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी हम हमारे बद्धता का मुख्य कारण जो है जो मूलभूत दोष है, क्योंकि ये जो मूलभूत दोष है शरीर के प्रति आसक्ति है, इस दोष के कारण बहुत अन्य दोष जो है हमारे जीवन में निर्माण हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे हम इस दोष को इस बंधन को दूर करते हैं, हमारे हृदय के अंदर की आसक्ति नष्ट होती है, चंचलता नष्ट होती है, तो हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक कहा जाता था कि एक राजपुत्र है, उसको उसके रूप का बहुत गर्व था। उसको लगता था कि मैं इतना सुंदर हूं कि देवताओं से भी मेरा रूप अधिक आकर्षक है। तो एक बार देवताओं उसको मिलने के लिए आते हैं, तो वो अच्छा पोशाक पहनकर सज धज के उनके सामने आता है। और वो स्वाभाविक रहता है कि जब हम बहुत अच्छा वेशभूषा कर लेते तो लोगों से हम पूछते हैं कि भाई हम कैसे दिख रहे, क्योंकि इच्छा रहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो वो पूछ लेता है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ आज। तो कहते हैं कि कल रात जो है आज से आप अच्छे दिख रहे। तो उसको ये समझ में आता है कि कल रात और आज ये 8-10 घंटे के अंदर मेरे अंदर कौन सा फर्क गिरा है। तो उस समय देवतागण कहते हैं, कह रहे आपको ये चीज को समझना है तो आप क्या करो, एक गिलास पानी लेके आओ। तो एक गिलास पानी ले आता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि आप थोड़े क्षण के लिए इस रूम के बाहर चले जाओ। तो फिर रूम के बाहर चले जाते हैं, फिर उसको अंदर बुलाते, फिर ग्लास के अंदर का पानी दिखाते, तो उसमें कुछ फर्क दिखता है। तो राजा बोलते हैं, वो राजपुत्र है, बोलता है कुछ फर्क नहीं है। तो बोलते हैं सेवकों को बुलाओ। सेवक आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो इतना ही पानी लाया था। तो फिर देवतागण कहते हैं कि जब आप इस कमरे के बाहर गए थे उसमें से एक चम्मच पानी जो है हमने निकाला था, मगर आपके नजर के अंदर वो नहीं बैठ रहा है। तो इसी प्रकार से हर क्षण जो है आपका शरीर जो है धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहा है, धीरे धीरे नाश होते जा रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे। तो जब ही उसको ये समझा कि जो मैं कल था उससे आज और वृद्ध हो गया हूं, और जैसे ही दिन बीतते जाएंगे मैं और वृद्ध होते जाऊंगा, उसके बाद में उसने कभी भी अपना चेहरा जो है आईने में नहीं देखा। तो ये महत्वपूर्ण संदेश है कि श्रील प्रभुपाद जी को हमारी ये देन है कि उन्होंने ये चीज़ हमको दिया, नवविधा भक्ति करने का मौका प्राप्त कर दिया, मंदिरों की स्थापना की जिससे हम नवविधा भक्ति कर सकते हैं, और साथ साथ ये सही ज्ञान दिया कि किस प्रकार से हम प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कि सबसे पहले हृदय के अंदर ये भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है ये आसक्ति नष्ट होगी तो ही हम साधना में यशस्वी बन सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि वाली के हृदय के अंदर का मोह है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो उसने संदेश सुना तो भगवत वाणी से उसका सारा मोह नष्ट हो चुका। न तो वाली है, उसकी पत्नी तारा है, उसका पुत्र अंगद है, वो भी अपना शोक त्याग कर सके। तो इसी प्रकार से भगवत गीता के शुरुआत में अर्जुन के अंदर भी यही शोक जो है प्रवेश किया था, मगर भगवत वाणी सुनने से ये शोक मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इसलिए आज के ये शुभ दिन के अवसर पे, ब्रह्मोत्सव के अवसर पे, हमें हमेशा भगवान के वाणी की याद होनी चाहिए कि भगवान का मुख्य संदेश क्या है। तो उस प्रकार से जब भी हम भगवान के विग्रह का सेवा करेंगे तो हृदय के अंदर भगवान के दिव्य रूप के बारे में प्रेम जागृत हो सकता है। तो हम भगवान के विग्रह के सेवा के बारे में जो जो भी कार्य करते हैं, जब भी हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र के अध्ययन से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसका परिणाम हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भावना जागृत होना ये आवश्यक होता है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्री प्रभुपाद के